यमन कृते प्रेषिता अनेक भोज्यं सखनिज देश शेषासन मुदित हृदम कांचतम च प्रजेन्दुम सुसर्षनातम रम्यवेशम गृहमम जननी लालितम प्राप्त गोष्ठम निर्व्यूढ़ अजस्र आलिदोहम स्वगृहम अनु पुनः भुक्तवंतम स्मरण। अब सायंकाल की व्याख्या पढ़ना था। इन भावों के साथ में इस अधिकार में आने पर भक्त लोग किसी रूप में उनका भजन करते हैं, उसका ये करता है अष्ट जानने से संध्या करते राधिका श्री राधिका सायंकाल सायंकाल समय हो गया। अपराह्न काल में कृष्ण गौओं को लेकर के लौट रहे हैं गोष्ठ से, जहां पर चरणी की भूमि है वहां से वो लौट रहे हैं अपने घर की तरफ में। उसमें राधिका जी, अब वहां पर हमने कहां पर समाप्त किया था, पहले सूर्य कुंड में समाप्त किया था, वो सूर्य पूजा अपराह्न में। इसके बाद में गायें लौट आई और कृष्ण लौटा करके गायों को लेकर के आ रहे हैं, और उस समय में सायंकाल में श्रीमती जी उनसे पहले आकर के कृष्ण के भोजन के लिए तरह तरह की सामग्रियों को बनाया। कैसे बनाया? यशोदा जी की आज्ञा से और सखी के माध्यम से। रति मंजरी भी हो सकती है, रूप मंजरी भी हो सकती है, किसी को भी भेजा। वो सखी हस्ते विविध मिष्टान तरह तरह के मनोहर लव इत्यादि मिष्टानों को भेजा है। कृष्ण भुक्त शेष ज्ञान, कृष्ण ने प्रसाद पाया, यशोदा जी ने धनिष्ठा के हाथों में दिया और धनिष्ठा ने चतुराई से कृष्ण का जो बचा हुआ जो अवशेष भोजन था महाप्रसाद के रूप में उसमें मिला दिया। यशोदा जी ने जूठा नहीं दिया, यशोदा जी ने जो बचे हुए थे अलग से उसको दिया, किंतु उन्होंने चतुराई से उसमें मिला करके उसमें ले आए। सखी दिलो निज सुख मानी, सखी ने फिर राधा जी को दिया और उसको पाकर के राधा जी प्रसन्न होकर के ललिता जी को देकर के सबको विभाग कराया, अपने भी उन्होंने ग्रहण। ये सायं सखी राधिका जी। इधर में कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण गोचारण करते हुए जब ब्रज में आए, उनके जितने पशु पक्षी थे वो जहां पर गांव मिलता है वन से वहां आकर के रुक गए, सुखशाली किरणी सब। और कृष्ण गैयों को लेकर के भीतर में प्रवेश, जिनकी जिनकी गैया हैं अपने घरों में अपने आप जाने लगे। यशोदा जी गांव के बाहर में खड़ी हैं और कृष्ण को देखते ही जितनी माताएं हैं उनके स्तन से झरने लगे दूध, और कृष्ण को पकड़ लिया। जितनी माताएं हैं एक साथ में लाखों माताएं, ये कैसे संभव हुआ? कृष्ण की जो माया शक्ति ने इसको सभी देखने के लिए उत्तर की है, इसलिए सभी ने कृष्ण को और उनको छाड़ने लगी लाल पांव कर। यशोदा मैया अपने डिस्टर्ब किसी को नहीं, जब सब उन लोगों का लाल पावन हो गया तो अंत में यशोदा जी कृष्ण से मिली और तब वो अपने बच्चों से मिलने लगी, और इधर यशोदा जी ने कृष्ण को लाल दिया करके उनकी आरती, संध्या की आरती उसी का ही संध्या में। इसी तरह से यशोदा जी कृष्ण को देखते हैं कि ये वन जंगल से आया, कहीं खरोंच तो नहीं आई, कहीं चोट तो नहीं पहुंची, बच्चों से लड़ने में भीड़ने में जंगल में इधर उधर जाने से कांट पूछने जाने से पैर में कांटे गड़े न पड़े, इस तरह से पैर से लेकर के और सिर तक सभी अंगों को, किसी को मुख को सात बार, किसी को तीन बार, किसी को दो बार, किसी को एक बार, चार बार, इस तरह से सर्वांग को अवस्था, इस तरह से चौदह बार लेकर के इसमें ये जो भूख है, पहले तो भूख दिया जाए तब भी भूख को देकर के अब फिर सबको नहीं देना है, इसमें से केवल भूख को, दीप को ठाकुर जी को देकर के देवता इत्यादि मनुष्य सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए ही एक दीप दिखलाया जाए, वहीं से दिखलाया जाए और सब लोग वहीं से। यदि बड़ी भीड़ हो ना तो दीप को नहीं निकालना चाहिए, बस वहीं से दिखला दिया है, सभी लोग वहीं से ऐसे ऐसे लेते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे यहां हम लोग करते हैं ना, इसमें बहुत सी गड़बड़ियां होती है। एक तो इसमें होता है कि पहले किसको दें, चिंता करता है, पहले नीचे का प्रश्न नहीं है, जो आए सामने से सबको एक बराबर, हवा पहले ये नहीं देखती कि किसके यहां पहले पहुंचे, इसलिए ऐसा नहीं। इसमें झूठा का भी प्रश्न नहीं है, हाँ गुरु के लिए सम्मान होता, इसके बाद में सबको सम्मान हो, बस वही एक आरती दिखलाई जाएगी सबको, इसके बाद में ऐसा नहीं। जो कमल का और जब फूल लिया और फूल से उनको ये दिया, वो फूल भी सबको चमर इधर में दिया तो चमर भी देने लगे सब, पंखा दे रहे हैं तो पंखा भी दे, ऐसा मत करना सब। बहुत से मंदिरों में देखा है हमने, इससे करके कुंभ के मंदिरों में वो नहीं जानते हैं बेचारे, इसलिए वो लोग क्षमा के पास गए, तो तुम लोग देश शुरू कर दो, बस प्रदीप ही केवल दिया जाए। तो इस तरह से यशोदा मां उनको आरती उतार करके घर में ले गई और स्नान रम्य वेश धारी, कृष्ण ने स्नान किया, रम्य वेश धारण किया। कहीं कहीं तो मिलता है कि कृष्ण ने स्नान करने के लिए चले जाते हैं कौन कौन, पावन सरोवर, और वहीं पराधा जी का एक कुंज है उसमें वो पहुंच जाते हैं, वहीं से उनका स्नान करते समय दर्शन करती हैं या सब सखियां मां से दर्शन करती। अब इसके बाद में जसोदा लाली तहरी सखा सह गोदोहन करें, शाम को गोदोहन करते नाना दीदी और दोहन करके घर में आते हैं, और नाना प्रकार के पकवान जो जसोदा जी को भेजा गया है, राधा जी ने भेजा, अपने रोहिणी जी ने बनाया है, वो सबको कृष्ण को देती हैं, सब सखाओं को साथ में देती हैं, और सभी लोग मिलकर के उस प्रसाद को अन्न को ग्रहण करते हैं। ऐसे कृष्ण जो हर ये करते हैं, और राधा जी ऐसी जो सेवाएं करती हैं, उन दोनों को संध्या के समय में हम लोग स्मरण और प्रणाम करते
पितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
साधक लोग क्रमश साधन भजन कर वैष्णव की कृपा से गुरु पदाश्रय करें, और गुरु पदाश्रय करने के बाद में सर्वोत्तम गुरु में सब जाति सब कुछ गुरु के चरण में, सब कुछ देते ही माने क्या अपनी स्वतंत्रता संपूर्ण रूप से उनको दे दी, ये तात्पर्य। अब अपने को स्वतंत्र ना समझे, यदि ऐसा हो गया तो वो भजन राज्य में कुछ बढ़े, अन्यथा भजन राज्य में नहीं बढ़ सकता। इसलिए गुरुवे सर्वस्थम
सर्वम गुरुवे
अब अपनी स्वतंत्रता मत रखो, ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा बने, गुरु जैसा कहते हैं तुम्हारी इच्छाएं मोर इच्छाएं मिछाई, अब भगवत विनोद आप भूल अपने को भी भूल जाओ। जब तक ये स्वतंत्रता की वृत्ति रहेगी तब भाई साधन भजन हमारा वो नहीं होगी, और ये सब तो भक्ति की बात ही, इसके बाद में देख करके विषम में न गुरु सेवा, विषम रूप में गुरु जी की सेवा,
सेवा माने क्या, वो जैसा चाहते हैं वैसा करो, उससे वो प्रसन्न हो। इस प्रकार से विषम रूप से उनकी सेवा। इसके बाद में और जो दस इसका तृप्त भी जो सब है दस, उसको पालन करते हुए चलेंगे और भजन करते चलेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव, भाव परिपक्व होने पर भाव में ही साधन सब कुछ बनेगा, और जैसा साधन हम करेंगे और जैसा वैसा ही भाव होगा, वैसे भी सिद्धि भी वैसे ही। हम साधन की स्थिति में जैसी भावना अपनी बनाएंगे, जैसी हमारी भावना रहे, और उसी समय में मूड ये बना दिया, भावना ये बनाई कि हमको ये चीज चाहिए, और ठीक उसी रूप में हम चलेंगे तो सिद्धि बहुत ही तात्कृषि वैसे ही सिद्धि हो। अभी हम लोग अवस्था में भी नहीं, अभी साधन जिसको कहते साधन में भी नहीं, अभी साधन में भी नहीं। साधक बिल्व मंगल को कहा गया तो समझो जो वो साधन करे, इसलिए हम बहुत अभी निम्न स्थिति में हैं। हो सकता है कि कोई इसमें हो किंतु उसके अधिकारी बहुत कम है, हो सकते हैं अधिकारी, ऐसा नहीं जगत में अधिकारी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किंतु उसके अधिकारी बहुत कम। वहीं पर सब कुछ ठीक हो। अब ये जो हमने कल तक जो बताया है वो सब है सिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य, उसी के अनुरूप यहां पर बैठ करके साधक इनकी जैसा चिंता करेगा। ये कहते मथुरा की नागरियां कैसे चिंता करनी है कृष्ण के समान, वैसे ही भावना चिंतन के साधक सिद्ध रूपे ने यह भी बतलाया था उसको। अब वो धीरे 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 वस्तु सिद्धि की तरफ में चल रहा, अर्थात उसका भाव और प्रेम में के ऊपर रूप में पर्यवसित होने जा रहा है। यह प्रेम दो प्रकार का, पहले होगा विप्रलंब और दूसरा है संभोग माने मिलन। हम साधकों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं इस विप्रलंब रस में ही पूर्वराग और दूर प्रवास भजन कार्य के लिए साधकों के लिए विशेष उपयोगी है और नहीं। अब इस चीज को समझने के लिए साधकों के लिए जो रागानुगी साधक हैं उनके लिए विप्रलंब भाव से
दूर प्रवास जो
पूर्व प्रवास मान नहीं
मानवीर विवाह
मैं बतला मान और प्रेम वैचित्र ये नहीं, चार प्रकार से विप्रलंब माने विरह होता, चार प्रकार से, एक तो पूर्वराग में, एक मान में, एक प्रेम वैचित्र में और एक प्रवासी प्रवास भी बहुत प्रकार के हैं, एक सन्निकट प्रवास और एक सुदूर प्रवास। मान भी बहुत तरह के सहतु अहतु, इसलिए ये सब बहुत प्रकार के हैं, इनमें से मान साधक को नहीं होगा, साधक को मान नहीं होगा। इस वो किसको होगा जिसको कृष्ण मिले हैं कृष्ण से अत्यंत प्रेम है उन लोगों को मान हो सकता, इसलिए वो संभव है। और दूसरा प्रेम वैचित्र जो है तो भी सहज संभव, प्रेम वैचित्र कब होता है प्रेम की बहुत ऊंची स्थिति पर होता है, इसलिए उसका भी साधन इन लोगों के लिए संभव है, वो भी मिलन में भी होता है। मिलन और विरह वर्ष में भी किंतु उसमें मिलन भी होता है प्रेम बच्चे, इसलिए वो भी संभव है। इसलिए दोनों लोगों के अनुगत्य में या तो पूर्वराग वाले भक्तों के अनुगत्य में अथवा दूर प्रवास वाले जो भक्त हैं जिनको विरह होता है उन लोगों के अनुगत्य में भजन करना लाभदायक, क्योंकि कृष्ण से मिले नहीं, अभी हम लोगों को दिखाई भी नहीं पड़े, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों के लिए ऐसा ही हमको मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? अभी साधन हम लोगों का ऐसा नहीं है, तो ये तो उन लोगों के लिए जो भावुक भक्त हैं, भावावस्था में हैं, अब वो सप्तम सोपान में जा रहे हैं, अर्थात वो जा रहे हैं विप्रलम फल, तो उनमें भी ये सबका बतलाएंगे कर्म 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 से। पहले ये बतला रहे हैं सिद्धि जो होती है भक्तों की, भाव भाव भक्तों की, वो सिद्धि का अंतर लक्षण अंतर लक्षण सद्भक्ति का अंतरलक्षण क्या है? हृदय द्रवित होना और उनका विरह की अनुभूति होना। हम भजन कर रहे हैं, नारद जी को भगवान का दर्शन कब मिला? जब नारद जी की ऐसी अवस्था हो गई छटपट करने लगे, प्राण का वियोग होने लगा, अमरे अमरे उत्तम स्थिति। बिल्ल मंगल को भगवान का दर्शन कब मिला? जब कंठा एकदम गले तक आ गई, अमर रहने लग गए, तो भगवान ने क्षणिक दर्शन दिया, तो भी क्षणिक दर्शन दिया, इसके बाद और उत्कंठा बढ़ा दी, हृदय में आग लगा दी, और तब फिर उस अंतिम दशा में जाकर के शरीर को त्याग कर दिया, मन बुद्धि अहंकार चित्त को भी त्याग कर दिया, और फिर ब्रज में कहीं जन्म लेकर के, और तब फिर इस शरीर के द्वारा उसका साधन होना कठिन है, वो नहीं होना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक श्लोक दिया, वो दिया जुगायितम निमिषे न चक्षुषा प्राप्तिशायितम शून्यानि जगत सर्वम गोविंद विरहितम। ये सप्तम श्लोक है शिक्षास्त्र, पहले इसके पहले का श्लोक है नयन गलदाक्षुधारया कदनम गदगद उद्धया गिरा कुलकर्णित बहु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। महाप्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भावावस्था में कि कब हम हरि नाम लेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, जगन्नाथ जी का नाम लेंगे, उस समय गदगद होकर के वाणी ऐसी हो जाएगी जो कृष्ण नाम पूर्ण उच्चारण नहीं कर सकते, गदगद एकदम जग गए, फ्री फ्री करने लग जाएंगे, कृष्ण नाम आएगा नहीं, ऐसी वाणी होगी। नयनम गलत आशु धारया, आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित, रूके भी नहीं, जहां नाम लिया आरंभ किया और बस होने लगे। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है तब तक सोचो ये हमारे अंदर में अपराध बहुत है, कृष्ण नाम भी चाहे ना करें, बहु नमाभास सदाई नमापराध, ये सब जान ले भाई कृष्ण भक्ति बात, ये सब कृष्ण की बाधाएं हैं, कृष्ण भजन जब तक चित्त द्रवित नहीं होता तदस्म सारं तदेव बते, ये पहले श्लोक में बताया है, हृदय हमारा पत्थर है इसलिए नहीं होता। कृष्ण नाम इतना मधु, इतना चित्त को द्रवित करने वाला है, जरूर करेगा ही, महाप्रभु के भक्त लोग कोई भी रूप सनातन जी, हरिदास ठाकुर जी, वेदाचार्य जी और जितने थे उन्होंने भालू बाघ को भी नाम लिया और वो लोग भी रोने लगे। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं पशु पाछी जुड़े पाता न बिदरे,
किंतु मन प्रशांत हो गरी नंदन, हम उस कीर्तन को गाते हैं, पशु रोने लगे, पक्षी रोने लगे, बाघ सिंह को भी रुला दिया महाप्रभु जी, और भी हाथ जोड़ करके ऐसे पशु पक्षी भी कृष्ण कृष्ण कहने लगे। किंतु हम लोगों का मन इतना कठोर है कि हम चित्तप्रवृत्त नहीं होता है। आप लोग सभी लोग अनुभव करेंगे, इतना करते हैं कभी होता नहीं। और यदि चित्तप्रवृत्त होगा तब विषय संसार में कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। किंतु हम भरपूर हमारी आसक्ति, चाहे कोई त्यागी हो चाहे कोई, इसलिए चित्तप्रवृत्त नहीं होना ये उसका लक्षण है। ये नाम हमारा शुद्ध नहीं हो रहा है, इसका कारण वही बतलाया। सबसे पहले जो बतलाया क्या बतलाया, गुरवे सर्वम तत्त्यात, ये नहीं, उनकी सेवा नहीं, अपनी सब कुछ दिया, स्वतंत्रता नहीं दिया, देना सब सहज है, रुपया पैसा दे दिया, भट छोड़ दिया, किंतु अपनी स्वतंत्रता ये गुरु जी को देना ये बड़ा भारी बात। रुपया पैसा सहज में दिया जाए और सब चीजें हो जाएगी, किंतु मन की स्वतंत्रता ये कठिन, इन सब कारणों से अपराध हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है, जो कल बतलाया था ना गुरु अवज्ञा हो जाती है, देह में आत्मबुद्धि हो जाती है, और सबसे अधिक ये आत्मदेहात्मबुद्धि ये कब जाएगी, जब सब हम दे देंगे सब, तो सब देते नहीं, इन बातों पर हम विचार नहीं करते, और भजन तो करते हैं कुछ कुछ, कुछ कुछ नाम भी करते हैं, इसलिए कहते हैं कि नाम करने में हमारा चित्त द्रवित नहीं होता। नैनम गलदा सुधार या बदनम गदर दया, तुम तक निकितम बपुह कदा तम नाम ग्रहण, कब होगा महापुरुष का, उसके बाद में तब इसका ये श्लोक आता है, दिवायुतम चक्षुषा प्राप्त शायुतम सुननाई जगत सर्वम गोविंद विदहे नवे, दूगा महापुरुष जी का। महापुरुष जी के आने के पहले बहुत से भगवत अवतार थे, बहुत से आचार्य जो गए, किंतु महाप्रभु से पहले भगवान किसको कहा जाता था, ऐश्वर्यमयी भक्ति है उसके जो उपास्य हैं उनको कहा जाता था भगवान, ऐश्वर्य ही भगवत्ता का उस समय साथ समझा जाता था। क्या भगवान नारायण कहते हैं सर्वैश्वर्यपूर्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण भगवान है, क्यों कौरव पांडव के युद्ध में दर्द दर्द जितने से राक्षसों को मारा, पृथ्वी का भार हल्का किया, ये मनुष्य के द्वारा कभी संभव था। रामचंद्र जी भगवान है, क्यों बंदरों के द्वारा पुल बंधाकर और उस पर आने जाकर के रावण दशकंदर जैसे वीरों को सब लोगों को समाप्त, कितने दिन में, थोड़े से दिनों में समाप्त, 90 दिन का युद्ध हुआ, और कृष्ण भारत युद्ध में 18 दिन में सब खत्म करा, अद्भुत अद्भुत का चुके इसी को भगवान कर दे। किंतु चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने कहा माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, महापुरुष ने बताया, इससे पहले कोई नहीं बतलाया न कोई आचरण किया था, बस जानते थे यही कि भगवान अघटन घटन अलौकिक शक्ति पर आए और अलौकिक कार्य कर सकते, बस यही भगवान, जो ये नहीं कर सकते भगवान, ऐसे भगवान को दास्य रूप में दास्य भाव से भजन करता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं उनकी कृपा के अभी भगवत्ता का भगवत्ता माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, जब कृष्ण सर्वैश्वर्य को अपना गुप्त रख करके या खप करके नर्मद लीला इत्यादि में अपने प्रेम को प्रकाशित करते हैं और प्रेम के द्वारा प्राप्त होते हैं, ये भगवत्ता यशोदा मां जी उनको बांध रही है और वो डर के मारे रो रहे हैं,
आंखों से अश्रु धारा भगवान को आ रही है, भक्त को नहीं। ऐश्वर्य वाले भक्तों में भक्तों को भी भक्तों को आता था आंसू, और इधर किसको आंसू आ रहा है? भगवान को भी आंसू आ रहा है दर्शन। ये माधुर्य का कारण। और आप जिसमें में हम कहते हैं जमुना जमुन सूत्र इत्यादि में भक्त लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके आंखों से दंड से आंसू आ रहे हैं। इसलिए दोनों में ये महाप्रभु के किताब हुए बिना ये समझा नहीं जा सकता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के पहले ये सब महाप्रभु जी से पहले ये सब विचार कहीं था? विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं था। होने पर भी उसका आविष्कार नहीं,
भागवत तो पहले भी है, तो किसी ने
आविष्कार नहीं किया। भागवत है ये शक्ति के इसी में है, किंतु आविष्कार नहीं किया। महाप्रभु के बाद ही सर्व दामोदर दया रामानंद जी और ये रूप गोस्वामी इत्यादि लोगों ने और इसका प्रचार किया। पहले कोई साहस ही नहीं कर सकता था कि ऐसी ऐसी सब बातें करें। कृष्ण यशोदा के डर से रोते हैं तो कोई ये भगवान क्या हुए? अच्छा तब रोते हैं किस लिए? उन्होंने अभिनय किया, बस ये कह देंगे, इसे आगे नहीं बढ़ेंगे। सचमुच में वो रो देंगे, ये भक्ति ऐसी नहीं थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। महाप्रभु जी की कृपा से हम लोग वृंदावन को जाए, महाप्रभु जी की कृपा ही से हम लोग रस क्या चीज है ये कुछ सुनने में आया। महाप्रभु जी की कृपा से राधिका जी और कृष्ण क्या हैं, वो लादनी शक्ति कैसे हैं, वो सब कुछ आया सुनने में। पहले लोग कृष्ण का नाम लेते थे रुक्मिणी सप्तभामा के साथ में, आज से 500 वर्ष पहले ये चीजें नहीं थी। महाप्रभु जी के समय में भी महाप्रभु जी के इन विचारों का प्रतिवाद किया कुछ लोगों ने, रुक्मिणी और सप्तभामा ही उनके साथ में रहनी चाहिए बहन। राधा जी से तो उनका कोई संबंध नहीं, किंतु महाप्रभु जी और उनके परिकरों ने इस चीज। इसलिए महापुर के जो 8 श्लोक हैं, एक 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 में दिया एग्जाम में ने एक एक दिया है, ये 7-5 श्लोक 7 एग्जाम में दिया है। प्रेम अब आरंभ हो रहा है, इसलिए साधन करके ये सब चीजें यदि नहीं हमारी आई तो फिर क्या जीवन तक। इसलिए हम लोगों का साधन भजन महाप्रभु जी के अनुरूप चलना चाहिए, उनके परिपरों को। जब ये आए ना महाप्रभु जी के गोविंद जी, गोविंद कैसे शिष्य, शिष्य तो है उनके गुरु जी के, किंतु इनके पास रहते कैसे सेवा करते? छाया की भांति करते थे। यहां तक कि स्वरूप दामोदर रामानंद का महाप्रभु जी से मिलना उनको कष्टकर प्रतीत होता था। वो नहीं चाहते थे ये महाप्रभु, जगदानंद जी अच्छे लगते थे, जगदानंद से बड़ी उनकी प्रीति थी। कहते जगदानंद पंडित जी आप यहां रहे तो ठीक है, क्यों? महाप्रभु जी के लिए तिल लगवाएंगे, खाट पलंग लगवा देंगे, गद्दा लगा देंगे, ये उनको अच्छा लगता है। और स्वरूप दामोदर नहीं, किंतु स्वरूप दामोदर की सेवा और रामानंद की सेवा बहुत उन्नत, बहुत उन्नत। इसलिए कहते हैं भाई देखो भजन करो तो ऐसा ही साधन करना पड़ेगा, एक धोखे के साधन से नहीं चलेगा। इसे सबसे पहले सब कुछ अपनी स्वतंत्रता वहां दो सेवा कर, उनके अनुसार में ऐसे भक्तों के आश्रय में जैसा वो चले हैं ना, जैसे रूप गोस्वामी चले हैं वैसे जीव गोस्वामी भी चले, जैसे रूप गोस्वामी चल रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या करते हैं, एकदम एक एक शब्द का एक एक बात का उनको लेकर के चल, ऐसे ही होना। जीव गोस्वामी ने जैसा कहा हमारे श्यामानंद प्रभु नरोत्तम ठाकुर
श्रीनिवासाचार्य
और श्रीनिवास ठीक वैसे ही चले, ऐसे हम लोग ही साधन भजन करें, रुपये पैसे के लिए हम लोग नहीं आए, सम्मान के लिए नहीं आए हैं, ये समझो। हम लोग और किसी चीज के लिए छोड़कर के ज्ञान नहीं आए, इस चीज के लिए आए। हम लोग तो थोड़ा सा जो भी जीवन में हो जाए तो आगे के जीवन हमारे सुख कर सकते, इसलिए इन चीजों को समझ करके वैसा ही साधन भजन करो। कोई भी साधन भजन हम करते हैं ना, तो इससे इस विचार करो, हमारे इस साधन भजन से हमारे गुरु या हमारे शिक्षा गुरु या वैष्णव लोग प्रसन्न हैं या नहीं, समझना चाहिए कि नहीं। यदि ऐसा नहीं विचार करता तो क्या है, तो तुम पता है। इसलिए सब समय ऐसा ही विचार करके चलने की चेष्टा करनी चाहिए, जो उनके चरण चरणों का आश्रय से हम लोग वैसा ही भजन, तब जाकर के महाप्रभु जी की ये चीजें समझ में कुछ आएगी, आपने तो नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग आए हैं, विशेष करके महाप्रभु जी के संप्रदाय में आए इन चीजों को समझने के। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, पहले ही इन्होंने दिया शिक्षा का साथ भाषण जुगायुतम से चक्षुषा प्राप्तायुतम निमेश जुगायुतम जुगायुतम निमिषेन जुगायुतम निमिषेन मैंने क्या
निमेश युग के समान गति
एक निमेश युग के समान गति होता है। इसलिए अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ जी से। अच्छा अब वहां पर चले उज्ज्वल दिनमणि में, देखे जी किस चीज का लक्षण है। कल हमने बतलाया था निमेश कल्पता
कल्प
कल्प खनत्व और खनत कल्प, ये तो ये किस चीज का लक्षण बतलाया था।
इसका विरह में और मिलन
में तो कौन स्थिति में रूढ़ भाव में कल बतलाया था। रूढ़ भाव कब होता है, जब भाव से अनुभाव, उससे राग अनुराग महाभाव और रूढ़, ये उस स्थिति का वर्णन है। जब प्रलंब में जब चिंतन करेगा भक्त तो उन लोगों का चिंतन करेगा जिनका रूढ़ भाव हो गया है, उसका स्मरण भाव अवस्था में किसका करेगा जिसको प्रेम हो गया है। और ये लोग किसका चिंतन करेंगे जिसके प्रति विशेष लोभ हो गया है, उन लोगों के प्रति जिनको ऐसा भाव हुआ। महाप्रभु जी में कौन सा भाव है, किसका भी नहीं कर रहे हैं, किशोरी जी का ना श्रीमती राधिका जी के भावों का ये आस्वादन, ये उनका भाव लेकर के और उनकी अंग कांति राधा भाव दूति शुभ लीलम नौमी कृष्ण, इसलिए ये उस रूप में कर रहे हैं, रो रहे हैं। युग आयु तक उनका एक युग भी एक निमेश भी आंखों का पलक पड़ना भी एक युग। हमको कभी कभी मान लिया कि कोई काम करते हैं, किसी से मिलना होता है, किसी से मिलना होता है, प्रतीक्षा हम कर रहे होते हैं, तो उस समय समय नहीं बीतना चाहता, उस समय एक मिनट भी एक घंटा दो घंटा चार घंटा होने लगता है। और जब किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत करने लगते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे एक घंटा युग की तो हम अभी बात नहीं करते, युग की बात हो उस अवस्था में जब युग रूढ़ भाव जब विशेष प्रेम होगा रूढ़ अवस्था आएगी, तो उन्हीं गोपियों की ये बातें कर रहे हैं। चक्षुषा प्राप्तिशा जैसे भादों के महीने में वर्षा होती है, उसी प्रकार से आंखों से निरंतर वर्षा होती है। इसलिए विरह में गोविंद के विरह में उनके लिए इतना विरह होगा कृष्ण के लिए। सुन नारायण जगत सर्वम, जगत माने क्या, यहां पर समस्त जगत शून्य दिख पड़ेगा, माने क्या हमारे जितने प्रेमी हमारे बंधु बांधव इष्ट मित्र पिता पिता पत्नी भाई बंधु सब कोई भी नहीं दिख पड़ेगा उनके विरह में। सुन नारायण जगत सर्वम गोविंद, हे गोविंद गोविंद की विरह में हमारी अब ऐसी कब दशा होगी, ये कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं। उद्वेगे दिवस ना जाए खन हरिदर्शु को सब उद्वेग में अब उनका समय नहीं बीतता, एक क्षण भी युग के समान बीतने लगता है कृष्ण के विरह। ये जब साधन करते 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 अंततः उस अवस्था में पहुंचेंगे अनर्थन वृत्ति होने के बाद में अंततः रुकी हो जाएगी तब कुछ कुछ मालूम पड़ेगा, या शक्ति हो जाएगी तो और कुछ मालूम पड़ेगा, अभी नहीं मालूम पड़ता। अभी तो हम लोग खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अभी बहुत समय है लिखने का पढ़ने का, ये सब समय है। अभी हमारे साधन क्या होना चाहिए, साधन क्या होना चाहिए, कृष्ण में आसक्ति प्रीति तो हम लोग क्या कर रहे हैं। जब खूब अच्छी तरह से विचार करते हैं तो देखते हैं कि बहुत दूर से हम लोग साधन कर रहे हैं। अभी इधर तक क्यों, अभी अनुभव करते हैं कि यदि कुछ अधिक पढ़ लिख जाएंगे तो उसको हम पढ़ेंगे, पढ़ करके वैसा करेंगे, यही तो सोचते हैं दूर से अच्छी संपत्ति। अभी और कोई भी साधन करते हैं, अभी सोचते हैं पहले ये कर लें तो इसके बाद हरी कथाओं में ऐसे रुचि नहीं आती, सुनने में भी रुचि नहीं आती, सुनते हैं जानते हैं जैसे अच्छी बातें हो रही हैं तो अभी नहीं हम जा सकते, क्योंकि हम कुछ अपने विचार से कर रहे हैं इसलिए उनमें रुचि नहीं होती। यही हमारा साधन है ये सुनना परिचित महाराज जी के समान, ये होगा मान लेके हम हरि नाम कर रहे हैं, 1,00,000 हरि नाम करेंगे ऐसा सोच करके हम बैठ और नाम मन इधर जाता है देर कभी चला जाता है तो जाएगा ही, तब तक उसको ले आ रहे हैं कर। मैं जब तक ही कम से कम तो 32 बार नहीं कर लूंगा, अर्थात 32 मैंने 50,000 में तब तो मैं लिखूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके बैठ गए। और उसी समय में हमारे गुरु वैष्णव भगवान की कथा कर रहे हैं ऐसी सब, तो यदि हम वहां पर बैठे रह गए या निर्जन स्थान में हम भजन कर रहे हैं किसी निर्जन स्थान में, तो वो अच्छा है ना वो अच्छा है, कौन सा साधन क्या हुआ। वो जो हम कर रहे हैं अनर्थ ग्रस्त अवस्था में साधन वो वैधी की नहीं है, अभी संदेह है। जैसे कहा ना भगवान का भजन करते हैं तो है कि नहीं है अभी संदेह है, सिद्धि होगी कि नहीं होगी कोई ठीक नहीं, किंतु भक्तों की सेवा में एकदम निश्चित है कि वो भक्ति मिले। ऐसे ही हम नाम करते हैं ठीक है, नाम करना जरूरी है, किंतु जहां पर ऐसी कथाएं हो जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं हम सोच नहीं सकते, उन कथाओं के श्रवण से हमारी भक्ति अधिक इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें कभी अवश्य संभावी है। इसलिए साधनों में भी तारतम्य है, अपने करने की अपेक्षा यदि वैष्णव कोई है ऐसे हमसे उन्नत जो कि वो कुछ कर रहे हैं उसका सुनना उसका चिंतन करना ही हमारे लिए बहुत साधन है, ऐसा विचार करके साधन भजन। उस समय में हम लोगों को विरह अनुभूति होगी, पहले तो गुरु जी के लिए होगा वैष्णव के लिए होगा तब तो भगवान के लिए पीछे है, अभी तो अनुभूति नहीं है उस प्रेम की, किंतु जो बतला रहा है उसके लिए यदि विरह हो तो यह सचमुच में साधन कुछ आरंभ हुआ है। पूर्ण साधिता विष्णु भक्ति स्थित वाला यदि उनके लिए नहीं हुआ तो भगवान के लिए क्या होगा, ये असंभव। गोविंद जी अपने गुरु ईश्वर कृपाद जी के परलोक के बाद अप्रकट होने के बाद उनके उनसे कहा जो मैं आप कहां रहूं क्या करूं, अरे भजन करो, तो भजन तो मैं जानता नहीं, तो अपने से उन्नत किसी वैष्णव के पास में रहूं। तो उन्होंने आप ही बताई जो मैं कहां रहूं, किस वैष्णव के पास में रहने से हमारा भजन होगा, मैं भजन नहीं जानता। उन्होंने क्या कहा, पूरी में चले जाओ, और श्री कृष्ण चैतन्य है उनके पास में रह करके भजन वहीं पर उनकी सेवा करो, वही से तुम्हारा। इसमें कोई संशय है कि भगवान को पाएंगे कि नहीं? यदि ऐसे लोगों का भक्त यदि मिल जाए संग, तो हम जो 10,000 वर्षों में जो साधन करेंगे उनके साथ में सेवा करने से जो ये सब साधन, इसीलिए मतलब ऐसे भक्तों की चरण धूलि पद धूलि पद भक्त इसीलिए तब वो पहले गुरु जी के प्रति वैष्णव के प्रति जो भगवान के प्रति ये भाव दिखलाते हैं हमको ले जाते हैं उनके प्रति ये विरह की अनुभूति होगी। गुरु जी की सेवा करने से वैसे ही सेवा भगवान के प्रति करें, जो कुछ यहाँ करेंगे साधन में ठीक उसी सब उसी कम रूप में वो बढ़ते चले जाए, तब वो ये भाव आएगा। वर्षा मेघ प्राय अश्रु वर्ष गोविंद ग्रह सुन्न होगा, गोविंद के बिराने ये त्रिभुवन शरण होगा। जैसे कि रघुनाथ जी कृष्ण के लिए नहीं कर रहे, राधा जी के लिए नहीं कहा, उसको समझने वाले कृपे हैं, किसके लिए कहा? रूप के लिए, रूप को जानने के लिए, उसको तो छुप सबू दामोदर तो वहां से छूट करके आए
सुनवाई
वहां पर पुरी में वहीं पर उनका विरह हुआ था, और उस विरह को नहीं सह सकने के कारण में ब्रज में आए, और यहाँ पर रूप सनातन का एक आश्रय मिला, कुछ कुछ भूल रहे थे किंतु इधर में फिर उनको गुजर गए। तो कहते हैं हमको वृंदावन वास की जरूरत नहीं, मुझको गोवर्धन वास की जरूरत नहीं, राधा कुंड की भी जरूरत और प्राणों की भी जरूरत, जीवातु रस्य
जीवातु रहित रस्य
जीवातु रहित रस्य, ये उनके जीवातु कौन है? इसलिए व्याघ्रम तुंडायुते सुंडायते महादुष्टम
गिरिंद्र
गिरिंद्रम अजगोरायते व्याघ्रम तुंडायते कुंडम जीवातु रहितस्य। तो सुंडायतम गोष्टम महागोष्ठ, महागोष्ठ भी आज मेरे लिए शून्य हो रहा है, वृंदावन ही तो राधापन से बढ़कर के कौन सा गोष्ठ होगा, और हम संसारी लोगों के लिए हमारा गोष्ठ जो ही है ये सब ठिका शून्य लग, हम लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं? देखो गुरु के बिना कैसा कि शून्य लगता है कि नहीं, वैष्णव के बिना शून्य लगता है कि नहीं, जो रूप गोस्वामी के लिए उनको होता है। इसलिए प्रेम जितने भी वृद्धि होगी इन वैष्णव के प्रति इनके प्रति ऐसा ही भाव आएगा। गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी के लिए क्या क्या सभी दो चार दिनों दस दिन में ऐसे ही सब देखा जाता है। तो गोविंद ग्रह सुनना ही डरते त्रिभुवन एकदम सुनने उनके लिए होता है, हम लोग को कितना क्या होता है भजन नहीं करने से हम लोग को कितना दुख होता है ये भी होना चाहिए। तुषा नले पूरे जनो ना जाए जीवन, तुषा नले पड़े माने एक कर्म कांडीय
कुमारी
भक्त, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक को उनसे शिक्षा ली और उन्हीं को हरा दिया, बड़े दुखी हुए, बौद्ध धर्म को विनाश करना उनका प्रधान उद्देश्य था, इसलिए बौद्ध धर्म को जानने के लिए उसका खंडन कैसे करेंगे पहले उनको तो समझेंगे, इसलिए उसका खंडन करने के लिए बहुत विद्वान होते हुए वेदों के भी कुमार भट्ट वहां नालंदा विश्वविद्यालय में बच्चे बनकर के छोटी उम्र में इतने बड़े पंडित वो जाकर के अपना नाम लिखवाया और पढ़ने जब पूरा पाठ हो गया उनका अब तो समावर्तन करने वाले थे और उनको बड़ा लोग विश्वास करते थे बहुत लोग अपना पंडित हमारे और यूनिवर्सिटी में जहां पर कि हजारों लाखों लोग पढ़ते थे उसमें ये विशेष बुद्धि संपन्न हुए इस पर लोग भरोसा कर रहे, और जब जाने का था कुछ दिन पहले ही उन्होंने वेदों की निंदा की तो इसके आंख से आंसू आ गए, छद्मवेश में था ये कोई जाने नहीं, किंतु आज वो प्रकट भजारी ये तो वेदों का ये समर्थक है, गुरु जी से जाकर के आइए तो वेदों की निंदा सुनकर के हंसता नहीं है रोता है, तो गुरु जी ने बुलाया उसको, तो क्यों रोता है? तो इसलिए रोया कि वेदों की अनर्थक निंदा आप क्यों कर रहे? तो अनर्थक है कि वेद तो सब बेकार का है, उसमें कोई सत्य बात है ही नहीं है। दोनों में बातचीत तर्क वितर्क हुए और तर्क वितर्क से इसने उनको परास्त कर दिया अपने गुरु को। गुरु एकदम निरुत्तर हो गए। जब निरुत्तर हो गए तब अपने शिष्यों की तरफ में देखा, तो जैसे कि ये मैं तो हाथ तो गया, बात तो ठीक है किंतु जगत में कोई ना जाने, इसको मार डालना ही अच्छा है। इसलिए मारेंगे कैसे? उसके लिए भी कोई षड्यंत्र बनाया। षड्यंत्र करके कहा जैसे ये हार गया है, अच्छा देखो यदि वेद सत्य है तो इसको ऊपर से फेंक दो, ये बच गया, मरेगा जो। वेदों में तो उन लोगों का विश्वास नहीं था। कहा जैसे इसको ऊपर छत पर ले जाओ, 120 मंजिल या कितनी मंजिल की इमारत थी नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा और बहुत बड़ा ये था, उसमें कितने हजार तो अध्यापक थे,
युवा
संघ वहां आए था चीन
चीन से,
तो वो वहां पर ताजे से उसको ऊपर ले जाओ, और यदि ये वहां से गिर करके बच जाएगा तो सोचे ये बच दे। इसको पूछो तो वेद सत्य है कि क्या है? अब इसको गिरा रहे हैं तो उसने कहा यदि वेद सत्य है तो मेरा कुछ भी ना हो, तो उसको ऊपर से फेंक दिया, तो जब बचेगा मर जाएगा। तो वहां नीचे गिरा तो उसका कुछ नहीं हुआ, केवल अंगली ही थी कानी, वो थोड़ी सी मुड़ गई, थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई। तो ऊपर से आए वो सब्जी से अब तो जरूर मर गया, यहां ने देखा जिसे कुछ नहीं हुआ, ये तो बच गया, ये तो बड़ा मस्त आश्चर्य की बात है। हाथ में केवल चुप लगे, उन्होंने बौद्ध धर्म का खंडन विखंडन करके भारत वर्ष से उसको भगा दिया। ये मंडल मिश्र प्रधान है और इसके बाद में शंकराचार्य जी से मिलकर के गौतम को हराया, भगाया था नास्तिक मत। तो ये जब बौद्ध यहां से चले गए, बौद्ध धर्म सबका खत्म कर दिया, अब उन्होंने कहा कि अब मुझको अनुताप करना चाहिए, मैंने अपने गुरु जी को ही खुद हरा करके और उसी के कारण सोच में वो मर गए। मरे कैसे? घूमते 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 मरे हैं हमारे गुरु, इसलिए हमको भी वैसे घूमते घूमते हुए मरना पड़ेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने ये धान होता है उसकी भूसी होती है और उसी को चारों तरफ से काफी ऊंचा उसको फेरी लगा दी और उसमें आग लगा दी और उसके ऊपर में चढ़ गए और चढ़ करके सो गए। खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, उसकी आग साझ ही नहीं जाती और साझ ही नहीं, वो जलता धीरे 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 वो उसकी आग महीनों तक रहेगी और गली तो नहीं होती। एक बार झट गया और मर गया बिजली का तरह, वो तो अच्छा है किंतु इस आग पर रह करके सेकते 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 और मरेगा, प्राण भी जल्दी नहीं जाएगा, यही हमारे लिए उत्तम प्रायश्चित है। ऐसा सोच करके वो आग पर चढ़ गया और जल गए। इसमें जब आधा जल गए तो शंकराचार्य भी आए, कहा भाई आप तो मर रहे हैं बड़े वेदों के, आप मर्मज्ञ हैं, मैं आपसे कुछ पर करना चाहता हूं। भगवान के संबंध में भगवान निराकार है कि नहीं और जीव ही ब्रह्म है कि नहीं, ये जगत सत्य है। तो ये तरीके से व्यक्ति से मैं तुम अत्यंत घृणित व्यक्ति है, मैं तेरे साथ में ये शास्त्रों के ऊपर मैं वार्तालाप करता हूं। हां करता, क्योंकि मैंने एक प्रायश्चित कर रहा हूं मैं अपने पापों का, इसलिए इस समय मैं तुमसे ये सब कहकर तुम्हें भगवत चिंतन कर रहा हूं, तुमको भगवत चिंतन कर रहे हैं। जब हमारे शिष्य प्रशिष्ठ उनसे किसी से यदि उनसे बातचीत होती ना तो हम तो जरूर वो प्राप्त करते थे किंतु चले गए। तो वही कहते हैं तूषा नाले पोए जनु ना जाए जीवन, उसी को तूषा नल कहते हैं। हम लोगों के घरों में बुढ़िया हम लोगों की दादी था, वो मिट्टी के वो बना लेती और उसमें आग उसी की आग भर देती और जब कुछ नहीं होता ऐसे ऐसे चला देती, पंखे चला देती, आग जल जाए और फिर वो रात भर वो आग दो दिन तीन तीन चार चार दिन तक वो आग रहता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि भक्तों का आश्रदा है भगवान के दिल में, ऐसा यदि जले तो भाई है किसका जलता है, हम लोग को कुछ अनुताप तो होता है ये बात रखी, किंतु ऐसा है नहीं, हम दूसरा कुछ काम ही नहीं करते, करते कोई प्रारंभ ही हम नहीं करते, किंतु हम तो बहुत काम कर रहे हैं, अभी घर बना रहे हैं, गैया पाल रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, बड़े ध्यान से भोजन करते हैं, कितने काम भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो ऐसा काम भगवान करे जैसे अंत में हम लोगों का उद्देश्य ऐसा है कुछ उसके लिए हो, ऐसा यदि प्रलंब भगवान के भजन के लिए नहीं होगा, गुरु वैष्णव के लिए विरह नहीं होगा, तो भाई भजन ऐसा नहीं होगा, और उसके द्वारा ये जीवन बहुत कीमती है भाई, नष्ट मत करो, तो उसका उद्देश्य रखकर तो वैसे ही चलो, एक क्षण भी नष्ट नहीं करना है। गुरु वैष्णव लोग जानते हैं प्रोसेस ये कैसे, ये सब लोगों को लेकर के चलना, दूसरे नहीं, जिनको अनुभूति नहीं वो कैसे समझे, इसलिए वो जाता करता हम ऐसे ही हम चलेंगे। अब वो कहते हैं भाई हमने भी प्रलंब जो बताया, भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं इस श्लोक का हमने जो उदाहरण इसमें विप्रलंब तो बहुत प्रकार के होते हैं, विप्रलंब माने विरह, उसमें पूर्वगार मान प्रेम प्रेम वैचित्र और प्रवाह, ये चार प्रकार के विप्रलंब, विप्रलंब माने अपने इष्ट देव से मिलना में बाधा है, माने एक एक स्टेज ये चार उपमेय होता है, जिसमें पूर्वराज माने अपने इष्ट देव से मिलने के पहले जो उनके लिए विरह होता है, मिलने की जो आतुरता होती है उसको कहते हैं पूर्वराज। हम लोगों से तो मिले नहीं, ये बात तो ठीक है, किंतु उनसे मिलने की आतुरता हमने कितनी है, जब हम अपने खुद आचार्यों को देखेंगे तो हम लोग समझ सकते कैसा आप कैसी आतुरता, इसी आतुरता के कारण ही गोपियां सबसे श्रेष्ठ मानी गई। हम अभी हमें कुछ हो सकता है जो इच्छा है, किंतु यदि हमारा उसमें धन की हानि हो तो हम नहीं करते, अर्थात हम कोई धन उपार्जन का कोई नौकरी करते, वाणिज्य व्यवसाय करते, यहां पर अभी यदि घर में कोई काम नहीं होता तो मथुरा के अभी कम से कम तो हजारों लोग यहां आ सकते थे सुनने के लिए, किंतु आ नहीं, क्यों गए, 7 बजे 8 बजे दुकान बंद होगी, एक तो कारण है, दूसरा कारण है उसे अर्थ आएगा तो अपने बाल बच्चों सबको हम पाल पोषण, यदि वही आते हैं तो वो सब सुख बंद हो जाएगा। तीसरा उतनी हमारी कामना इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन चीजों को हम उनसे अनाशक्त होकर के यहां आ जाए। गोपियों ने देखो क्या किया, उनको लोक लग जाए उसको भी छोड़ दिया, भय था समाज का वो भय समाज का भी दूर कर दिया, गुरुजनों की बात मानना एक बात, उन्होंने गुरुजनों की बात को भी ठोकर मार दी, जितना जो कुछ था धर्म की मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ दिया, ससुर बैठे हैं और गोपियां कृष्ण की बंसी बजी तो उस समय में ससुर कारण कहां जा रहे, उस ये उनका गिरा हुआ उठाया नहीं, चल गई उनकी बात, पति ने आकर के रोक दिया कहां जा रही है, उनसे बात ही नहीं, आभूषण पहनना था कपड़े पहनने थे, कपड़ा लटक रहा है उसको जरा देख लो, तो लोग कहां जा रहे हैं कपड़े तो जरा संभालो, चल किसी मानी लोक लज्जा जो कुछ था सब छोड़, ऐसा किसी का हुआ, अभी हम घर से छोड़ करके आए हैं तो विचार करें भाई क्या करना चाहिए, विवाहिता स्त्री नहीं है तो कोई बात नहीं है चले आए, जगह तो विचार में बच्चे कैसे रहेंगे स्त्री कैसे रहेंगे ये सब तो विचार करें। अभी मान लिया कि हम यहां पर आते हैं रोज रोज, घर वाले कहीं कहां कहां रोज ढूंढ जा रहे, घर में घुसने नहीं देंगे, वो बेचारे क्या करेगा, अभी पराधीन है ना। गोपियों ने कुछ माना, क्यों नहीं माना? इस तरह का उनका विरह कृष्ण के प्रति का भी प्रणम भाव था, इसलिए नहीं माना। सर्वोच्च कोटि का यदि हम लोगों को भी ऐसा हो तो ऐसा हो, अभी न ऐसा हो किंतु हमारा उद्देश्य एम ऑब्जेक्ट तो वहां रह गया, वैसा ही हमको होना चाहिए। इसी का नाम भजन, इसी का नाम है साधन। वैसा ही हमारा भी हो और वैसे ही क्रम से हम लोग पढ़ते हैं। बड़े हमारी श्रद्धा है, अभी अनर्थ है, सब कुछ है, किंतु साधन भजन वैसे स्वयं भी खूब खूब खाएंगे, आराम से रहेंगे, पंखा चला दो, यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है, पंखा चला दो, कूदो का लेना ना माधो का देना, जितना चल जाए कोई बात नहीं, हम बाहर में जा रहे हैं, पंखा छोड़ दिया और अब सबके बिजली जल रही है घर में, कोई बात है, दिन में हम नहीं पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, कब 12-1 बजे पढ़ेंगे, पढ़ो कोई बात, कोई भी मना करने वाला कुछ भी नहीं, बड़े आराम के साथ में जिंदगी, जो चीज चाहिए वही चीज मिल रही है, तो बताओ तो कहां क्या। ये साधन भजन, इसलिए साधन भजन करने के लिए विरक्त व्याकुलता होनी चाहिए भाई, तब ये भजन होगा। इसलिए कहते हैं कि भाई अरे पूर्वराग, पूर्वराग होगा कैसे, हम लोगों के लिए भी पूर्वराग पूर्वराग कुछ नहीं है, अब गुरु जी के लिए वैष्णव के लिए जो हमें पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे लिए इतना कष्ट सह रहे हैं, हमारे लिए उनको चिंता है ये खाएगा क्या, हम लोगों को खुशी को चिंता है कि हम क्या खाएंगे शाम को, इसको चिंता है, हम तो निश्चिंत है, साढ़ चल रहा है ना उसको कोई चिंता नहीं, हम लोग भी ऐसे दीवाने हैं, कोई चिंता नहीं, ऐसे गुरु के प्रति भी यदि कैसे हमारा भजन है उसके लिए चिंता कर रहे हैं, दिन रात लगा रखे हैं, जिसका मन इधर उधर न जाए ना, अच्छा अच्छा तीन बार पाठ होगा भाई, डराते हैं, क्या डराते हैं, यदि नहीं आएगा तो खाना इसका बंद कर दो, देखो जैसे ये कहां गया, कोई खबर लेते हैं कहां है क्या कर रहा है, माता पिता भी इतना नहीं करेगा, साधन भजन के लिए कितना दिन रात चिंता करते हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, माता पिता अपने पुत्र की चिंता करता है किंतु गुरु उससे लाख गुना चिंता करता है, उसको सत्कर्म में रख करके साधन भजन में लगाया है, वही समझ सकता है जो करता है, इसलिए इन सब विषयों को समझ करके उनके लिए यदि विराट प्रेम स्नेह इत्यादि न तो किसके लिए होगा, इसलिए यहां पर सीखो ऐसा ही, इसलिए इसको बतलाया सबसे पहले पूर्वराग, पूर्वराग मैंने कृष्ण से गोपियों के मिलने के पहले जो उनका उनके प्रति मिलने की उत्कंठा जाती रहे उसको कहते हैं पूर्वराग, हमें तो वो नहीं होगा किंतु सुन लो ये कैसे हुआ गोपी, यदि वैसे होने की चेष्टा यदि करनी है पूर्वराग भी कैसे होगा, जिस चीज को देखा नहीं सुना नहीं कुछ नहीं, किसी ने चित्र अंकन करके दिया और देखा बड़ा सुंदर है चित्र, कोई ब्रज में घूमने वाली यशोदा के भवन में जाने वाली कोई महेरी है, कोई स्त्री है, महेरी होती है महेरी, वो गई दूसरे के लिए, नंद का लाला इतना सुंदर है, इतना चंख है, ऐसे हरकतें करता है कि चित्त मोह लेता है, चलता है देखता है उसका सभी कुछ मत हो, वो जो छोटी छोटी किशोरी गोपियां थी छोटी छोटी उम्र वाली, कृष्ण को देखा नहीं किंतु सुना और सुन करके कितना सुंदर है नंद लाला, किसी ने उसका चित्रांकन कर दिया उसको देखा देख करके नहीं, इसी तरह से बहुत प्रकार से पूर्व होने का, अभी हम लोगों का श्रीमद भागवत थे, अभी श्रीमद भागवत हम लोगों ने 9 दिन सुना,
सुन करके हम लोगों ने देखा जी मथुरा में उनका जन्म हुआ, वृंदावन में वहां गोकुल में गए, यशोदा की हैं लाली खाली, ये सब सुना। हमने ये भी बताया कि कृष्ण यथा स्वयं भगवान कौन है, उनका रूप भी वर्णन किया। रूप वर्णन में पहले ब्रह्मा जी की स्तुति, नोमिथे अप्रपुषे तरितंबराय भुंजावतंत परपच्छल संखाय मल्यस्तगे कमलते प्रतिदाने नो लक्ष्मणस्ये विदुपदे परसुप्रभु जाय। कितना सुंदर, हाथों में कौल है, बेत्र यहां लगा रखा है, बंसी को अगर यहां पर लगा रहे और उसी से कुमन यहां पर रख दिया है, तरह तरह के आचार रख दिया है, चेटी का आचार रख दिया है, मिर्च का आचार रख दिया है और सब चीजें रख दिया है और तभी मिश्रित अन्न का खबल देख रहे हैं। इधर कितने सुंदर बंकिम उनकी दृष्टि है, यहां मोर मुकुट है और अक्षरों पर मंद मुस्कान है, जो देखा वही पिट जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी मृदुपदे वृंदावन में सुंदर सुंदर कमलों कोमल चरणों से जिसमें सुंदर सुंदर चिन्ह है पृथ्वी पर रख रहे हैं गोचारण के लिए, सखाओं से परिवर्षित होकर के और सखा लोग भी उनकी जय जयकार कर रहे हैं, कन्हैया की जय हो कन्हैया। दूसरा बतलाया
श्यामम हिरण्य परिधिं
पत्नियों का श्यामम हिरण्य परिधिं वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनु प्रतांते विन्यस्त हस्तरेण सुनान मभ्यम कर्णोत्पलाल सपूर्ण। अपने बाएं हाथ रख दिया है अपने सखाओं के कंधे, दाहिने हाथ से कमल घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारा हृदय ऐसे ही घूम रहा है, इसलिए घूम रहा है जिसको दिखा रहे हैं उससे कह रहे हैं कैसे हैं श्यामंग श्यामंग नवीन मेघ के समान, और स्वर्ग विद्युत है वो पीतांबर ठीक श्यामंग हिरण्य परिधिं वनमाल्य बरह सुंदर सुंदर पुष्पों से बनी हुई वैजयंती माला गले से लेकर के पैरों तक झूम रही है और उसने तुलसी के पत्ते भी लगाए हैं मंजरिया भी और उस मधु लोभी भ्रमर उस वैजयंती माला पर चारों तरफ में झंकार कर रहा है, घूम रहा है मधु के लोभ से सुगंध के लोभ से। वैजयंती के माला हरण धान भेन अधर सुधयो अधर सुधयो हरण धान वेणु वेणु कुंभ में धारण कर रहा है। कितना सुंदर मुकाम अधर सुधयो गोमुरयन गोपबिंद बिंदारण्यम शपदरमणम प्राविशक्ति ये तुमने और तीसरा ये है बराहाप्रम जिसकी अभी व्याख्या कर रहे हैं, इसको सुन करके पूर्वराग होना चाहिए। ऐसे कृष्ण हम मिले जिसमें दोनों वाला पहले को छोड़ करके तीसरे पर ही नजर है, वो क्या है ना
बरहा पीड़ा
वो भी है बरहा पीड़ा पिराणम
नटपत्रिकम
ललाट पटले वस्त्र चले ये सब सुन करके ऐसे कृष्ण में दर्शन करने के लिए यही हमारे इष्ट है। कौन गोप स्त्री परिवेष्टित हो विजय थे गोपाल चूड़ा ये सब सुन करके भी यदि उनसे हमारा मिलने की भावना नहीं हुई और उनके लिए विरह नहीं हुआ तो कुछ समझना जी हमारे सुनने में कुछ गड़बड़ी रह गई। इसीलिए कहते हैं ये हुआ पूर्वराग। दूसरा क्या प्रवास, प्रवास क्या प्रवास होता है जब हमको छोड़ करके कहीं निकट में या दूर में चले, निकट माने गोचारण के लिए और दूर माने मथुरा और मथुरा से भी दूर सुदूर प्रवास या द्वारका
उनके विरह में जब तड़प रही है गोपियां, ये इनके लिए प्रवास हम लोगों के लिए संभव पर नहीं है। मिलन तो अभी हुआ ही नहीं, इसलिए पूर्वराग ठीक है। और दूसरा है प्रेम वैचित्र्य। प्रेम वैचित्र्य कब होता है? मिलन में ही होता है। मिलन में तीव्र प्रेम बढ़ जाता है। उस अभी तो मिले ही नहीं है तो प्रेम क्या होता, इसलिए ये बोल रही। हाँ, सुदूर प्रवास हम कर सकते हैं, अभी देखे नहीं मिले नहीं, इसलिए इस भावना के साथ में भगवान का भजन होना था। इसलिए अब पूर्वराग का एक दो उदाहरण दे रहे हैं। वो दे रहे हैं गुप्त की माचार अयं कुशल स्मेणु दामोदराधर सुधाम की गोपिता नम भुक्ते स्वयं जगवशिष्ठ संत धन्यो सत्यो मोतु सर्व। इसके व्याख्या हम लोग कल करेंगे, एक घंटा करीब करीब हो चुका है, बस आज यही है। कीर्तन करो हम जान साधन कल हम लोगों ने बतलाया था भक्ति विनोद था से मिलने की जो उत्कंठा है, साधक भक्तों को उसी प्रकार से उत्कंठा रहनी चाहिए मिलने की। उसके लिए साधन होना चाहिए अथवा दूर प्रवास। दूर प्रवास माने बहुत दूर है, वो अभी मिले नहीं, इस रूप में भगवान के प्रति भजन कर। यहाँ पर पूर्वराग के संबंध में गोपियों को कैसे कैसे वो कृष्ण के लिए मिलने के लिए छटपटाती हैं, ऐसे हम लोगों की साधकों की भावना होनी चाहिए। तो ये सबके लिए संभव बने। जो अनर्थग्रस्त जीव है, जो विशेष करके अभी कनिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों को तो अभी आरोप सिद्धा भक्ति अधिक से अधिक, इसलिए उन लोगों के लिए बात नहीं करते। जो स्वस्थ जान में अर्थात जो भावावस्था में पहुंच गए हैं, उन लोगों के लिए यहां पर बातें, साधारण साधकों की बातें नहीं है। जैसे हम लोग अभी लॉ जब पढ़ते हैं तो बड़े बड़े वकील लोग कैसे बहस करते हैं और जज उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, इसके संबंध में अभी कुछ पढ़ाई होती है और सुनते हैं हम। ऐसे ही यहाँ पर उन लोगों की बातें हम लोग अभी वैसे ही विद्याओं का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसके लिए सहायक। इसलिए गोपियां तो अंतिम परिधि सीमा है। गोपियों को कृष्ण के विरह में कैसा लगता है यदि 1000 का 1,00,000 भाग का एक ही भाग आए अभी हम लोगों के साथ में, तो बहुत बहुत अंततः वो उनकी लीलाओं का स्मरण करें, यह भी हम लोगों के लिए बहुत। इसलिए यहां पर कहा, देखो भक्तों के साथ में रहने से भक्ति का अनुशीलन होता है। अभी हम लोग जो पाठ कीर्तन कर रहे हैं ये क्या है, शुद्ध भक्ति का एकदम अनुशीलन में भक्ति कर रहे हैं और अपने मन से कुछ यदि करेंगे तो भक्ति का अनुशीलन होगा कि नहीं होगा तो भी ठीक है। जब हम लोग पहले आए ना तो त्रिविक्रम महाराज जी ने हमसे कहा कि महाराज जी तो उसमें था नहीं, आप अभी संस्कृत कुछ पढ़ लें आपको बहुत काम आएगा। हमने कहा कि कल मर जाएंगे तो जैसे तो मर जाएंगे तो नहीं होगा, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हैं तो हम भी नहीं पढ़ते। तो हम लोग तीनों आदमी में किसी ने नहीं पढ़ा, न बावन महाराज जी, न हमने, तीनों और सबसे मैं सबसे संस्कृत का कम ज्ञान हमको दिया। वो लोगों को बंगाल से पढ़ने वाले थे उनको भी बंगाल में संस्कृत का कुछ अधिक पढ़ाई है, किंतु देखो ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते इतना ज्ञान है जैसे बड़े बड़े उपाधारियों को कोई पूछता नहीं और हम लोग की टूटी फूटी बातों को सुनने के लिए कहां यहां विदेश सर्वत्र लोग आते हैं ये गुरु सेवा का और सुनने का फल। वो निर्भर योग्य नहीं है, व्याकरण रटते रटते यदि हम लोगों का सारा जीवन चला गया तो कहां गया। इसलिए वैष्णव के पास न रह करके थोड़ा खड़ा भी हो और ये भी हो तो ठीक है, इसको छोड़ करके यदि होगा स्वतंत्र जीवन दुख दुख
बड़
दुख पाई आती स्वतंत्र जीवन है। स्वतंत्र जीवन में भाई बहुत दुख है, ये स्वतंत्रता है, इसको समझ बुझ करके सदुपयोगी अनुगत्य में सब हो तब तो वो बहुत काम देगा। और नहीं जो ही आया सोई व्याकरण का पंखम लेकर के बैठ गया, कोई सेवा सेवा की कोई जरूरत नहीं, तो अंत पर्यंत कम कम तम लेकर के रह जाए। और ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, वो एक आदमी ने आज हमसे कहा कि मैं मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। तो हमने उससे पूछा अच्छा भगवान को पाने के लिए बहुत से साधन है, उसमें सबसे साधन क्या श्रेष्ठ है। तो उसने कहा कि भक्ति, तो बहुत सुंदर, सब साधन में भक्ति से, आज सब भक्ति में श्रेष्ठ हम कौन से अंग है, कहे नौ है, मुझे इससे क्या और चाहिए, सिर्फ नौ में प्रधान कौन है, पांच प्रधान कौन कौन भी बदला हम कहे और क्या जानने की जरूरत, आप है कुछ जानने की, सब तो हो गया इसे। अच्छा ये नौ कितने में से प्रधान है, तो बोला जी 64 में से, तो और भी अच्छा है, और तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण करो सेवा करो और ये तो भागवत पास हो गया, यही भागवत जीवन को उसमें रखा। आप यदि ये सब छोड़ करके और केवल व्याकरण में कंखम में रह गए तो उससे केवल अभिमान आएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ करके वैष्णव के अनुगत्य में जो कुछ करना है करना, उनसे बिना पूछे कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है वो कर रहा है, ये तो घर में भी कर सकते थे। इसलिए खूब अच्छी तरह से भाई विचार करके, और नहीं तो ये जीवन बेकार का था। जो ऐसे लोग हैं जिनके एकदम निष्ठा भक्ति में, उन लोगों के लिए यह सब, जिनको ये है कि मैं पढ़ करके तब फिर उसके द्वारा जो ज्ञान होगा उसके द्वारा ये सब आएगा, तो उसके लिए भक्ति सुदूर पराहत हो जाए। जो कुछ है, जो ज्ञान बुद्धि विवेक, उसी समय से ही काम में लगा दो, उसी समय में ही भगवान के भजन में लगा दो। जैसे गुरु जी कहते हैं वैष्णव का, वो आदमी ऊंचा उठ जाएगा। और जो अपने मन से करने लगा भाई, उसमें गिरने का डर। इसीलिए कहा था अपने स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार मत करो। तो गुप्त तप हिमाचरण कुशल अस्मदे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि साधकों के लिए विप्रलंब भाव, विप्रलंब में भी चारों में से केवल दो भाव, एक पूर्व राग मैंने अभी कृष्ण से कोई मिले नहीं, और दूसरा है प्रवास। कृष्ण द्वारका में है, गोपियों के लिए कब से है, सब समय के लिए वही है गोपियों, उनके लिए वो सब पहले की चिंता करना वो सब बहुत दूर की बात है। जैसे यहां पर थे, इसलिए दोनों ऐसे भावुक भक्तों के लिए दोनों कहां पर जरा कुशल स्मरेनो। वैसा साधक ये चिंतन कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, चाहे वो ब्रजविदं च विष्णु
विक्रीडितं
ब्रजविदं च विष्णु
श्रद्धान्वितो
अनुसमया तत परमीय भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्यताम् निद्रोगमास अभिनत कचेरे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बहुत आशा बंजर साधकों के लिए इसकी टीका में लिखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अब साधकों के कहते हैं कि मान लिया कि तुम्हारी भाव अवस्था तब की अपने साधक मान से मिलने के लिए खूब अस्त व्यस्त है, चिंता मत करो, बहुत चिंता मत। अभी हम लोग महाप्रभु जी से 500 वर्ष पीछे आए हैं, इन्हें कोई चिंता का कारण तुम भजन करो ऐसे। अभी तुम्हारी मृत्यु के बाद में तुम महाप्रभु जी के जहां लीला हो रहे वहां पर पहुंच जाएगा, जो माया पहुंचा देंगे यदि अभी ठीक से भजन, दर्शन मिल जाएगा उनको, भक्तों का दर्शन मिल जाएगा। और होने के बाद में तुमको इस उसके बाद वाले जन्म में इतना कर देंगे जहां तक ब्रह्मांड में लीला हो रही है कृष्ण की, उसमें जो माया पहुंचा। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है साथ में। तो वैसे ही यहां पर भी कह रहे हैं सुनिए आप अथ बढ़ने गीत जब श्रद्धांवित हो, श्रद्धालु हो करके सुनिया, सुनिया माने क्या, विधिलिंग, सुनिया विधिलिंग है,
श्रवण करें।
विधिलिंग उसको कहते हैं निश्चित रूप में करना कर्तव्य है, यदि नहीं करते हैं तो उसके लिए तुम्हारा प्रत्यवाय हो। जैसे सच बोलो, ये क्या हुआ, सच बोलो एकदम
आदेश,
आदेश यदि नहीं सच बोलेगा तो इसका तुमको पाप लगेगा। ऐसे ही सुनियात, सुनो, सुनियात माने कैसे सुनो, श्रद्धा पूर्वक, और उसमें भी कैसे अनुसुनियात, अनुसुनियात माने
अनुगत में निरंतर,
अनुगत्य अनुगत में भाई
आदर गुरुमुखा श्रोत्रा पश्चात।
इसलिए वैष्णव से गुरु से इस विषय को अच्छी तरह से भली भांति निरंतर सुनो, और सुन करके तब फिर इसका वर्णन करो। ऐसा जो वर्णन करता है वर्णन करो, क्या होगा? हम इस स्थिति में काम क्रोध लो मा वो मा सत्य भरा पड़ा, हम अनधिकारी हैं, जो के नहीं है।
अब एक अभी परीक्षा करते
हमको क्या करना चाहिए, हमको नहीं सुनना चाहिए, हम एक तरफा डिग्री देते हैं, हम लोगों को नहीं सुनना है, ये कहता है ये सुनना है। कौन
चक्रवर्ती ठाकुर
कैसे, यदि श्रद्धा है तो, और श्रद्धा नहीं है तो तुम मरो तुम्हारा, हम तुम जाओ, किंतु यदि थोड़ी सी भी श्रद्धा है और भगवान को अपने हृदय में अवरुद्ध करना चाहते हैं तो सुनो, तुम विचार करने वाला नहीं, तुम मत विचार करो, वो तो विचार गुरुदेव करेंगे, हम तो गुरुदेव करेंगे, इसलिए गुरु के मुंह से श्रद्धा पूर्वक इस विषय को सुनो कि कृष्ण ने क्या क्या है। तो श्रद्धा पूर्वक पहले श्रवण करके गुरु से, तब उसी का चिंतन करो और फिर उसका चिंतन, परिणीत जब भक्ति परम प्रतिबंध काम हो, हृदय में तो काम है, क्रोध है, मद है, भव मानना सत्य सब है, विशेष करके यहां पर काम, काम माने संसारिक भोगों की बात यहां पर। तो जब भी हमारे अंदर में संसारिक भोगों की कामना है तो भागवत सुनो कि नहीं सुने, जब भी श्रद्धा है तो सुनो, काम रहते देखिए, काम उसमें बाधक नहीं, श्रद्धा ही उसमें बाधक, यदि श्रद्धा नहीं है तो बाधा है, और श्रद्धा नहीं है किंतु काम है तो सुनो। यदि श्रद्धा पूर्वक तुम गुरु के मुख से ये भागवती करना होता निरंतर अनुगत्य मेरा करके श्रवण करोगे उतने ही परिणाम में काम दूर होता जाए, यही समय पूरा। आज जो लोग एकदम भाव अवस्था या सिद्ध हैं उनके लिए भजन की जरूरत है, उनके लिए क्या करें, इसलिए यहां पर कहते हैं काम तो है क्योंकि जितने ही श्रद्धा से तुम निरंतर श्रवण करता रहेगा काम धीरे धीरे दूर हो जाएगा और सुख भक्ति तुम्हारे हृदय में पतिलब्ध कामम फिर रोग मासु, हृदय का रोग, हृदय का रोग किसको कहते हैं, हृदय रोग माने काम वास, ये काम की बात इसको कहते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। आंसू माने, आंसू माने कितना जल्दी, एक दो जन्म ना दस जन्म ना कितना, जितना उसकी श्रद्धा रहेगी उसी कम रात में हृदरोग मासु अपिघ्नत अचिरेण तीर, अचिरेण बहुत जल्दी से जल्दी वैसे कथा। ऐसा नहीं कि काम को हटाओ श्रद्धा को बढ़ाओ, काम क्रोध सब दूर हो जाएगा और श्रद्धा हमारी अत्यंत बन जाएगी, अपराध दूर हो जाएगा, तब ये कथा सुनेंगे, दोनों में कौन ठीक है, कौन सा ठीक है, हमारा जैसा है वैसा ही रहेंगे किंतु हम श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, ये ठीक है उसे काम दूर हो जाएगा, आखिर काम दूर करके क्रोध दूर करके अपराध अनर्थ दूर करके तब फिर हम भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं, ये लाख कोटि जन्मों में ऐसा नहीं होगा, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं, इसलिए हम स्थानीय स्थित अनुमान होती जो जिस स्थान में है श्रद्धा से,
स्थाने मैंने वहां पर साधु संघ स्थित करता है,
वो भी कहा है गृहस्थ रहो त्यागी रहो ब्रह्मचारी रहो, जो ये भी है जो जहां है वहां से साधु संग में रह करके थाने स्थित वहां स्थित होकर के सबके लिए संभव नहीं है कि दिन रात गुरु जी के पास में रहे, कोई जरूरी नहीं, विशेष करके गृहस्थ भक्तों के लिए संभव नहीं, और गृहस्थ भक्तों का कहीं की संख्या अधिक होती है, परीक्षित महाराज जी के लिए
ये परीक्षित महाराज जी के लिए हुई बातें ना, स्थानीय पिता उनके लिए राकेश ने कहा यदि बच भी जाते वो तो वो सब छोड़ छाड़ करके आते, नदी ऋषि महाराज सब छोड़ छाड़ करके आए, इसलिए स्थानीय स्थिति मैंने जो जहाँ जिस रूप में है, चाहे न्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे कोई भी हो, जो स्थान में जाए वैष्णव के अनुगत्य में उनके संग में, तो काम अपने आप दूर होता जाएगा। ऐसा नहीं कि काम को दूर कर लेंगे, अपराध अनर्थ इत्यादि को दूर करके तब भक्ति करेंगे, ऐसा इसलिए कार्य यही उचित है। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो इसके लिए पत्रकार मैंने पाप लगेगा, इसलिए विधि नहीं मिले उसमें। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं हम लोग श्रवण करेंगे, श्रद्धा के साथ में श्रवण करने की चेष्टा करें। तो गोप्या की मां करे, अब हम लोग चल रहे हैं यह पूर्व राग का विषय है गोप्या। ये इसलिए बतला रहे भक्ति विनोद ठाकुर जब वो भाव अवस्था तक पहुंच गया है सागर, अब वो आगे बढ़े ऐसे लोगों के, हम लोग अभी से कुछ सब ठाकुर का कुछ सुने तो इसके प्रति हम लोगों को रोक होगा और हम लोग भी ऐसा साधन करें। तो गोपियों का पूर्व राग कैसा है, कृष्ण चले गए मथुरा, मथुरा से चले गए बात उस समय में पूर्वराका कृष्ण भी है। अब पौगंड अवस्था से क्रमशः वयसंधि में आ रहे गोपियां भी धीरे 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 उम्र उनकी बढ़ने, कभी कभी जदा कदा बहुत दूर से उनकी भेंट हो जाती, कभी कभी उनकी बंसी ध्वनि भी सुन पड़ती, कहीं कहीं पर दूसरों के द्वारा कृष्ण के संबंध में वो सुनती है कितने सुंदर कितना कैसे हैं, उनके गुणों की बखान सुन करके उनके प्रति कृष्ण गोचारण के लिए चले गए। और कितनी दूर चले गए हैं मान लिया कि जैसे ये लोग छठी कराने हैं तो कृष्ण चले गए हैं मान लिया कि गोवर्धन वहां से 5-7-10 मील दूर, मानो वहीं से गणित ध्वनि सुन रहे, मानो वो सब रूप देख रहे हैं वहीं से बरहा पीड़म और घर में मिलकर के वो इसी की चर्चा सब टोलियों की टोली में जहां तहां सब करते। इसका तात्पर्य यही है हम लोग भी साधक हैं, हम लोगों को भी अपने अपने अनुकूल टोलियों में जरूरी नहीं है कि सबका सबसे बंधुत्व भाव हो जाए, कोई जरूरी इसमें सजातीय कुछ भी हो सकते हैं, कोई सुहित भी हो सकते हैं, कुछ तटस्थ भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। विपक्ष यहां पर नहीं होना चाहिए साधकों में, एक जगह विपक्ष तो होना ही नहीं, किंतु सुहित स्वपक्ष इत्यादि होना चाहिए, अपने मन के अनुकूल जो प्रश्न है जिनसे मिलता जुलता है स्वभाव चरित्र साधन भजन उनकी टोली में बैठ करके कृष्ण कैसे मिलेंगे, उसमें भागवत है गोसाइयों के ग्रंथ है उनका अनुशीलन श्रवण कीर्तन इत्यादि का, यही भजन का मूल चीज है। यदि गोष्ठियों में हम लोगों ने ऐसा आरंभ कर दिया जहां मिलते हैं जुलते बस इसी की चर्चा, भगवान कैसे मिले साधन भजन, कभी ये कर रहे हैं कभी रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ ले लिया, कभी रूप गोस्वामी के ग्रंथ लिए, पर भक्त गुणों ठाकुर का ग्रंथ हम लोग के लिए सबसे उपाधि है क्योंकि वो सबसे परवर्ती आचार्य है, इनके भक्त गुणों ठाकुर हैं प्रभुपाद जी हैं हम लोग के गुरु जी हैं उनका साहित्य है, ये सब हम लोग के लिए बहुत उपकारी है, इनका सब समय एक मिनट भी समय इधर उधर में बर्बाद हो या तो हरिनाम और नहीं तो ग्रंथों का अनुशीलन और नहीं तो सेवा। सेवा को यदि कोई किसी ने तुच्छ देखा और उसे मन उसका पता कि हम बर्तन मलने जाए हम झाड़ू लगाए ये सब ये यदि हुआ था तो वो गया रसातल, ये सब मत देखो, सब सेवा को सेवा मान करके और हरि कथा श्रवण और उसको बराबर ही समझो, इसलिए पहले वो सब काम करके हरि कथा के लिए सब सुनेंगे परस्पर टोलियों में इसी की चर्चा होगी। गोपियां टोली बना करके जैसे टोली जैसे चंद्रावली जी की सरकार
वो राधा जी अथवा ललिता विशाखा की टोली में आएंगी, उनकी टोली अलग है, श्यामला जी की टोली अलग है। इसमें भी राधा जी के गणों में जो टोलियां, उसमें भी विभिन्न प्रकार की टोलियां अपने अपने भावना के अनुसार, इसे अपने अपने जूठ के अनुसार में, हम लोग अपने अपने भावना के अनुसार में जो जैसे हैं मिलकर के उन्हीं की आलोचना। ये सब किस पर दिखाई है गोपियों का, ये सब जूठ इत्यादि सब मति और तदीय दो भावों के ऊपर में ये सब तो गोप्य की मां करे वहीं से बैठ करके देख रही हैं, मानो जो कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, उनका रूप देख रही हैं, उनकी लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, और करते करते देखा उन लोगों ने ये कृष्ण गोचारण करते 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 एक जगह कदम्ब वृक्ष के नीचे बंसी बजा रहे। हठात उनके मन में ये भावना आई, हो गोप्य अभी सखियों अहो गोपियों किम आचरत अयम कुशलस्म बेणु, ये जो बेणु है देखो तो किम आचरत या इसने अयम मने इसने किम आचरत क्या आचरण, यहां पर एक चीज छिपी हुई है, क्या छिपी हुई है, क्या आचरण किया, तप किया न दान किया न पुण्य तीर्थों में स्नान किया, न जाने क्या इसने किया, मैंने क्या साधन भजन किया जिसे उसको इतना अधिक ये मिला, इसको इतना फल मिला है, क्या फल मिला है, कुशलन मैंने कुशल अस्मवे कुशलन मैंने इतना अधिक फल पाकर के ये कृतार्थ हो गया, ये कुशल उसको हुआ, कुशल है हम जो चाहते हैं वो मिल गया कि नहीं मिल गया, हम वैसे ठीक चल रहे हैं कि नहीं, इसका नाम कुशल। कु माने क्या,
कु माने माने पृथ्वी, कु माने ज्वार, कु माने गोमर,
और कु माने खराब
खराब,
और सौल माने क्या
है,
सौ
सौल
सौल माने लला का ठोकते हैं जमीन में फूटा इत्यादि, ये
सल
कु और सल दोनों ही निकल गए हैं, अतः कोई भी विघ्न बाधा इत्यादि नहीं है, जीवन अच्छी तरह से निर्वाहित हो रहा है, इसका नाम है
कुशल समाप्त हो
गया, कु सब समाप्त हो गया, सब जितना था वो समाप्त हो गया, इसका नाम है जीवन में अब कोई विघ्न बाधा नहीं है, इसका नाम है। तो इसमें देखते हैं कि यदि कोई कृतार्थ है इस जगत में तो ये बेणु ही है, बेणु के पर्याय आती और भी शब्द हैं, मुरली बंसी मुरलिका और वेणु और कुछ है, ये तीन ही प्रसिद्ध हैं, किंतु दो को है इस मुरली और बंसी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द का उच्चारण नहीं किया है, जान बुझ करके छोड़ दिया, और वेणु शब्द का उच्चारण किया, वेणु शब्द है एक ही चीज का नाम, एक ही चीज पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो हमें